नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एन से प्रदोष योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में राजनीतिक दलों का बढ़ता चंदा और जनता की घटती भागीदारी। नागरिकों को राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। सरकार की तरफ से पेश हुए उनके वकील यानी सॉलिसिटर जनरल आर रमन ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही है। सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर चंदे से जुड़ी जानकारी जनता से साझा करने में क्या दिक्कत है? राजनीतिक शुभचिंतक और भ्रष्टाचार पर वार करने वाले राजनीतिक दल की सरकार अगर कहे कि वह जनता को नहीं बता सकती कि उनकी पार्टी को चंदा देने वाले लोग कौन हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हैं। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि एक संवेदनशील विषय पे आप परिचर्चा करवा रहे हैं, और ये चर्चा तो आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है, और जनता को हक है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानने का अधिकार। आर्टिकल 19 जो है वो
जी
ये बात सिद्ध करता है कि व्यक्ति जान सकता है। जी बोलिए।
जी सर, राजनीतिक में चंदों की अहमियत और जनता की घटती भागीदारी के साथ जनता को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी मिलना कितना अहम देखते हैं सर लोकतंत्र में?
नहीं, मैं तो इसको बहुत ही अहम मानता हूँ, क्योंकि ये व्यवस्था जनता के द्वारा निर्मित है।
जी
जब जनता के द्वारा निर्मित है तो जनता को सभी, क्योंकि पूरी प्रभुसत्ता तो जनता में निहित है ना, तो फिर जनता को जानने का अधिकार है। और संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो इस बात की आज्ञा भी देता है, तो इनको क्या दिक्कत है। और अभी देखिए, गवर्नमेंट ने हालांकि जो बॉन्ड जारी कर, मतलब निर्वाचन आयोग के संज्ञान में जो बॉन्ड जारी हुए हैं, SBI में मिलते हैं वो, तो वहां पे मतलब इसी चीज के लिए किया गया था कि ये जो काला धन है जो राजनीतिक चंदे के रूप में जाता है उस पर नियंत्रण रखा जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि भाई जानने का अधिकार नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए, कि क्योंकि इसलिए क्योंकि जनता के द्वारा निर्मित व्यवस्था है, तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि
जी
इनको चंदा कहा जा रहा। और सबसे बड़ी बात क्या होती, यदि हम इसको नहीं जान पाते तो फिर इससे भ्रष्टाचार अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है। गवर्नमेंट यदि ऐसा करती है तो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और बहुत कुछ मतलब विसंगतिपूर्ण हो सकता है। जी
जी सर, तो सरकार की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में थे सॉलिसिटर जनरल आर रमन्ना ने यह बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में कि इस चंदे की जानकारी जनता के सामने नहीं रखी जा सकती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर ने निर्वाचन आयोग से इसके संबंध में जानकारी मांगी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर?
नहीं, ये उचित कदम है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, उनकी उनकी जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग के माध्यम से, क्योंकि निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक संस्था है, और यदि उनके पास भी इस बात की जानकारी रखी जाए तो ये भी एक पक्ष हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता द्वारा निर्मित व्यवस्था है, तो जनता को पता होना चाहिए कि इनको चंदा कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगामी भविष्य में फिर ये जो व्यवस्था है ये लाभ के हित में उभर कर आती है, कि मतलब जिन उद्योगपतियों ने जो चंदा दिया या जिन व्यक्तियों ने चंदा दिया उनको फिर लाभ पहुंचाने का अप्रत्यक्ष रूप से कार्य संपन्न होता है, और इससे फिर जनमानस का हित मारा जाता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा किया, तो मैं उसको उचित मानता हूँ।
जी सर, जनता को इस राजनीतिक दलों की जानकारी सार्वजनिक करने में जनता की भागीदारी कितनी अहम देखते हैं? क्योंकि जनता को इसके बारे में जानकारी पता रहे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जब जनता द्वारा निर्मित व्यवस्था है तो फिर जानने का अधिकार क्यों नहीं भाई, ये एक सवाल खड़ा होता है कि जानने का अधिकार क्यों नहीं, क्योंकि जनता द्वारा निर्मित व्यवस्था है, और ये व्यवस्था सरकार के स्वरूप में जनता के हित में काम करने वाली व्यवस्था है, और जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा निर्मित व्यवस्था है, तो जनता को ये तो अधिकार बनता है।
जी
जनता को जानना चाहिए, जनता को जानना चाहिए, जनता को ये अधिकार मिलना भी चाहिए कि किसको कितना चंदा मिला,
जी
है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल जानकारी देना चाहिए उनको। जी
सर, सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस जो वकील थे आर रमन्ना सर, जिन्होंने कहा कि देश की जनता को राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है, सर इस बयान को किस तरीके से देखते सर?
नहीं, ये बयान तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको जो जानने का अधिकार जो मिला है
जी
उसका तो कहीं ना कहीं ये उल्लंघन लग रहा है। क्यों नहीं जान सकते हम? हम कोई भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान के संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के रूप में भले ही हमको अलग रखा गया, वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मसला, पर ये कौन से व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है? क्योंकि जब जनता जनता के पास स्थानीय प्रतिनिधि जाएंगे, अभी देखिए हम लोग अपने छिंदवाड़ा जिले या पांडा जिले की बात करें या अपने स्थानीय सर सांसद तहसील में बात करें, कितना निर्वाचन आयोग अपनी सतर्कता तो रख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पैसे का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा आपके पास? इसका स्रोत पता होना चाहिए ना। जब आप भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हो, गवर्नमेंट जनता इनकम टैक्स देती गवर्नमेंट को, और उस इनकम टैक्स से भारत सरकार की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है, तो इनके पास जो सोर्स आ रहा है, जी इनके पास जो चंदा आ रहा है, वो ये भी देखा जाए कि वो इनकम टैक्स के दायरे में है कि नहीं है, वो आ कहाँ से रहा है, वो किस स्वरूप का है, ये जानना क्यों नहीं जरूरी है? इससे मैं तो कहता हूँ कि जानने से इससे भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगेगा और अवैध गतिविधियों पे इसका नियंत्रण लगेगा, क्योंकि अवैध गतिविधियों का बहुत सारा पैसा निर्वाचन आयोग हर पक्ष पे ध्यान नहीं रख पा रहा है, रखता भी है लेकिन फिर भी राजनीतिक स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व पहले से अपनी सारी व्यवस्थाएं कर देती है ना। तो वो निष्पक्षता और स्वायत्तता और जनता के बीच की जो निर्भीकता है मतदान के प्रति, वो बनी रहना चाहिए। इसलिए जरूरी है सब चीजें, वो क्यों नहीं जान सकते भाई?
जी
उसके पीछे का तर्क होना चाहिए ना, क्यों नहीं जान सकता जब जनता के द्वारा निर्मित व्यवस्था है? तो एक सीधी सी बात है कि यदि हम कहीं पे भी सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं चंदा लेके, तो जब हमको यदि वो रजिस्टर्ड संस्था है तो हमको पूरा ऑडिट देना पड़ता है कि हमने कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया, ये पैसा चंदा यहाँ से आया, ये चंदा यहाँ से आया। तो धार्मिक संस्थाओं को ये अधिकार है जानने का, मतलब उनको अनुदान प्राप्त होता है, तो फिर ये भी तो एक व्यवस्था है ना। और इन ये नेतृत्व जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो संगठन, वो राजनीतिक व्यवस्था, वो सारी संवैधानिक दायरे के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई है। तो संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जिन संस्थाओं की स्थापना की गई है, तो उनको कटघरे में तो खड़ा करना चाहिए था।
जी सर, लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार होती है, पर क्या सर राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर सब मौन क्यों?
हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक तो हमारी जो चुनाव प्रणाली है महंगी होती जा रही है। मतलब ऐसा लगता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र जो है अर्थतंत्र में परिवर्तित होती जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है कि अर्थतंत्र प्रभावशील जो माफिया है, जो सफेदपोश अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, जो अवैध गतिविधियों से चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उस तरह के लोग यहाँ संगठन, आप करोड़ों रुपए दे के टिकट खरीद रहे हैं, तो आप बताइए आपका फिर जब आप करोड़ों रुपए टिकट खरीदने में खर्च करें, तो फिर आप उसका खर्चे का निकालेंगे कहाँ से निकालोगे? तो उसके लिए फिर आपकी गतिविधियां बढ़ जाएगी, तो वहां मानव कल्याण जनहित की बात होने की बजाय आपका व्यक्तिगत हित होता है। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए जो सीटें घोषित की गई, तो उसमें कई ऐसे उम्मीदवारों का अखबारों में उल्लेख भी हुआ कि मतलब कहीं पे उनका विरोध हो रहा है। तो विरोध होने की वजह क्या है? क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही ना, आजकल नए स्वरूप में ये हो रहा है कि लोकतंत्र में लोग अब पार्टी के बजाय व्यक्ति की छवि को बहुत महत्व दे रहे हैं, और इसलिए इसलिए साफ सुथरी छवि के लोगों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन अब कई तो अच्छे जो उम्मीदवार है उनके पास इतना अर्थतंत्र मजबूत नहीं होता। तो मैं तो कहता हूँ कि जानकारी देके, और हमको चुनावी व्यवस्था भी इस तरह से निर्मित करना चाहिए कि अब ये अलग बात है कि उम्मीदवारों को इतना इतना खर्च करना है, इतना इतना खर्च करना, सारी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा वो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी गतिविधियों के खर्च करते, तो उसकी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए जनता को फिर?
जी सर, राजनीतिक दल कॉरपोरेट द्वारा मिलने वाले चंदों पर कॉरपोरेट किस तरीके से इसका लाभ कॉरपोरेट को मिलता है, और इसको जनता किस तरीके से जान सकती है या जान जानने के लिए किस तरीके के पैमाने अपनाए?
देखिए पहले जो था वो तो था साफ सुथरा, मतलब कारपोरेट जगह तो बड़ी उद्योग कंपनियां, मैं अपने स्थानीय स्तर की बात करूँ ना, जो दारू भट्टियों के जो ठेकेदार है वो चंदा देते थे। अब उनसे चंदा जब मिलेगा तो आप अंदाजा लगाइए, रेत के ठेकेदारों से चंदा मिलता है इनको, मतलब सारे जो गतिविधियां है जो कानून के दायरे के बाहर है उनसे यदि चंदा लेते हैं ये लोग, सत्ता में आते हैं तो फिर उसकी वापसी भी तो करना है ना, तो वापसी के लिए फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं गलत लोगों को संरक्षण मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि राजनीतिक फैशन बने, मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक संरक्षण जनता के उन्मुखता की ओर आगे बढ़े, लोगों के कल्याण के लिए बात करें, यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ हित की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब जैसे वो बॉन्ड जारी करने का जो सिस्टम किया गया है SBI में, जो प्राप्त होते हैं चंदे के लिए इन लोग को, वो एक अच्छी व्यवस्था है। और दूसरी चीज, जैसे चंद्रचूड माने और चंद्रचूड साहब ने जो कहा कि भाई यह जानकारी या तो निर्वाचन आयोग को दी जाए, ये भी एक अच्छा पक्ष है। दूसरी चीज है कि जिस क्षेत्र में जनता जिस प्रतिनिधि को चुनाव में खड़ा कर, मतलब जो संगठन के द्वारा खड़ा किया जा रहा है, तो उसको स्थानीय स्तर पे उसका जो आय का स्रोत है वो देखा जाए, वो आय का स्रोत क्या है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको जांच के दायरे में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जांच के दायरे में रहने से कम ये जो मतलब चुनावी जो महंगाई बढ़ रही है हमारी, चुनाव में जो खर्चा बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण आएगा। या फिर हमको इस तरह की व्यवस्था निर्मित करना चाहिए कि हम ये खर्चे कम हो जाए। और अभी एक जो नया अवधारणा मेरे मस्तिष्क में आया था कि मोबाइल के माध्यम से, जैसे अमेरिका और कई विदेशी देशों में होता है कि मोबाइल के माध्यम से वोटिंग वाला सिस्टम है, हालांकि इसमें थोड़ी सी कठिनाई है क्योंकि हमारा बड़ा वर्ग एक ऐसा है कि अभी भी शिक्षित और साक्षर नहीं है, तो वो एक अच्छा सिस्टम है। तो इससे ये खर्चे पे नियंत्रण हो जाएगा, और एक करोड़ों अरबों रुपए का खर्चे का भंडार बन गया, उतना पैसा यदि विकास में लगाया जाए तो बहुत अच्छी बात। जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव वाली जो बात आई थी वो भी सही है, क्योंकि उससे भी खर्चे पे नियंत्रण हो सकता है। और स्पष्ट तौर पर ये कड़ाई से इस बात का पालन किया जाना चाहिए कि जो खर्चा ये लोग करते हैं उसका सोर्स क्या है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके इंटरनली सोर्स कई बार सफेद पोष अपराध से जुड़ा हुआ धन भी इनके पास होता है और उसकी कोई ऑडिटिंग नहीं होती, इसकी जांच भी होनी चाहिए। जी
जी तो ये थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर राजनीतिक दलों का बढ़ता चंदा और जनता की घटती भागीदारी, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर मोबाइल ने को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी धन्यवाद सर।
जी मोबाइल ने सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।